ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी तृप्ति दीदी जी आए हैं और दीदी जी हम दीदी जी का परिचय यही करेंगे कि दीदी जी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े हैं और ब्रह्मा कुमारी इसका जो आर्ट एंड कल्चर विंग है उसके गुजरात के जोनल कोऑर्डिनेटर आप हैं। आप वर्तमान में भावनगर स्थित सभी सेवा केंद्रों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। आपके सरल स्वभाव, मधुर बोल और स्नेहमयी व्यक्तित्व से अनेक आत्माएं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं और इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का आप अभ्यास करते हुए अनेक आत्माओं का योग भी परमात्मा के साथ जोड़ना यह आपकी बहुत बड़ी विशेषता है और इसी विशेषता के आधार से आज का हमारा टॉपिक भी है कि परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना, संवाद करना। तो आज इसी टॉपिक को लेकर दीदी जी हमें अपने प्रेरणादायी शब्दों से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति। पहले तो वही सूचना देते जो पीछे बैठे हैं वो सब आगे आ जाए, आगे आ जाओ, जो अभी आए हैं वो भी आगे आ जाओ, बीच में जगह नहीं छोड़ो तो अच्छा रहेगा और बाद में आने वालों को भी सोचना नहीं पड़ेगा कहां बैठे। लाइन नहीं छोड़ो, अभी भी आगे की लाइन में। हम सबके प्यारे परमात्मा के घर में, सो अपने घर में आप सबका दिल से स्वागत है। आप भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकार यहां पहुंचे हैं। कोई ऐसी विशेष कला न भी हो तो भी जीवन जीने की कला, कुछ न कुछ कला, वो कलाओं में भी इंटरेस्ट होता है, जो देखने के लिए भी शौक होता है। तो कलाकार का अर्थ क्या बताते हैं? कल को आकार देने वाले, और वो आकार मिलेगा हम आंतरिक रूप से सशक्त होंगे तभी परिवर्तन करके सुसंस्कृतिक जो है वो हम बना सकते हैं। सर्व कलाओं में सिरमौर कला है, कौन सी? राजयोग, जो हमारे मन को राजा बनकर चलाता है। इसलिए राजयोग ये सबसे ऊंचे से ऊंची, सबसे बड़ी कला है। तो आपकी कला के लिस्ट में ये भी एक कला सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर में लिख देना। डांस की कला है, भाषण करने की कला है, ड्राइंग करने की, कई प्रकार की है, उसमें सबसे पहला ये है। क्योंकि कोई भी क्षेत्र में हम आध्यात्मिक जो लिंक मिस हुई है उसको हम साथ में रख करके चलेंगे तो कला में और ही निखार आएगा। वो कला लोगों को अच्छे अच्छे गुण मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी मिलेगी और न सिर्फ प्रेरणा, हम तो कहेंगे शक्ति भी मिलेगी और उसमें सफल हो सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो मिसिंग लिंक है उसको आप सब जरूर भरपाई कर देंगे, जोड़ देंगे। कल तो आप सभी ने सुना सबसे पहला राजयोग का स्टेप या लेसन, मैं कौन हूं। आध्यात्मिकता का सबसे पहला स्टेप है। अभी वो सुना, कल उसके बारे में कुछ अभ्यास किया, खुद को आत्मा समझा, देह से अलग हूं। ये आत्मा समझना और सामने वाले को भी आत्मा समझना, वो हम तब महसूस करते जब कोई शरीर छोड़ता है, तब हमें भी जाना होगा, हम भी कुछ अंदर बैठी हुई कोई चैतन्य शक्ति है, लेकिन जीवन भर भूल जाते। तो कल का जो आपने सुना है वो आपकी इतनी तैयारी हुई, जो आप कोई नया मकान बनाया हुआ होता उसमें सारी इलेक्ट्रिक कनेक्शन फिटिंग सब कर लेते हैं, बाकी क्या रहता है? इतना सब करने के बाद भी मुख्य बात रहती मेन पावर हाउस से कनेक्ट करना, वो आज का आपका लेसन होगा। जो मूल्यों का स्रोत है, अभी की जो भाषा है उसमें हम ये कहेंगे मूल्यों का स्रोत है, वो है परमात्मा। तो हमें सबसे पहले मैं कौन हूं, मेडिटेशन सीखने की इच्छा किसको है, बोलेंगे तो मुख को है नहीं, कान को है, आंख को है नहीं, अंदर बैठी हुई चैतन्य शक्ति आत्मा को है, इच्छा उसको है, उसे सीखना है मेडिटेशन। तो वो है साधक, दूसरा है साध्य। साध्य किससे जुड़ना है, साध्य कौन है? और जब तक ये नहीं जानते हैं तब तक हमारी एकाग्रता नहीं रहेगी। मन को कहां एकाग्र करे, कहां कनेक्ट हो, कौन स्रोत है, तो वो आज नहीं जानते। तो एक फरियाद रहती है कि भगवान की याद में बैठते हैं लेकिन मन भटकता है, माला फेरते हैं लेकिन मन के कुछ और जगह घूमते रहते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि वो स्रोत कौन है, वो साध्य कौन है। आज परमात्मा के विषय में इतनी जानकारी नहीं है, सत्य को नहीं जान पाते, जिस कारण अनेक भिन्न भिन्न धर्मों की दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं उत्पत्ति हुई, अनेक धर्म में सब बट गए हैं। हमारा धर्म ये मानता है, हमारा धर्म ये मानता है, और विश्व बंधुत्व की भावना वो खत्म हो गई, सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। लेकिन एक पिता परमात्मा के हम सब संतान हैं। पिता कौन है, किसको कहेंगे? तो एकाग्रता के लिए अति आवश्यक है। आज ऐसा समय आया कि परमात्मा के बारे में इतनी भिन्नता, एक बार एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था परमात्मा कौन है, इसमें 5-6 कॉलम थे, और पहले लिखा था प्रकृति परमात्मा है, दूसरे में लिखा था ब्रह्म तत्व परमात्मा है, तीसरे में लिखा आत्मा सो परमात्मा, चौथे में लिखा परमात्मा सर्वव्यापी है, पांचवे में लिखा परमात्मा निराकार है, छठे में लिखा परमात्मा साकार है, और सातवें में बड़े अक्षरों में लिखा परमात्मा जैसी कोई हस्ती ही नहीं है। इतनी सब मान्यताएं, अभी सत्य तो एक हो सकता है, ये अलग अलग बातें, अभी इसमें से सत्य क्या है, निश्चित कर सकते सत्य क्या है, और सत्य को पहचानने के लिए कुछ कहेंगे लॉजिकली हम सत्य को पहचाने कैसे। जौहरी होता है तो सच्चे सोने की या कितना कैरेट सोना है वो पहचानने के लिए, परखने के लिए कसौटी पर कसते हैं, उससे मालूम पड़ता कि ये सोना इतने कैरेट का है, उसकी कीमत उसके आधार पर फिर वो बताते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें भी परमात्मा की पहचान परखने के लिए भी कुछ कसौटी, सर्वमान्य कसौटी पर कसना होगा कि इतनी बातें हैं उसमें से सत्य क्या है। तो ये जैसे एक बार 5 अंधों को कहा गया आप हाथी घर में जाकर के हाथी को पहचानो, अंधे थे तो उनको ले गए वहां, फिर 5 अंधों ने अपने अपने हाथ रखे पकड़ा हाथी को, किसी ने पैर पकड़ा तो कहा हाथी खंभा जैसा है, किसी ने पीठ पर हाथ घुमाया हाथी दीवार जैसा है, पूंछ पकड़ी हाथी रस्सी जैसा है, सूंड पकड़ी हाथी सांप जैसा है, किसी ने कान पकड़ा हाथी सुपड़ा जैसा है। ऐसे हर एक के लिए उसकी पहचान क्या थी, भिन्न भिन्न रही। समझो वो 5 हाथी एक छठे अंधे जो अंध था सूरदास था उनके पास जाकर फिर वर्णन करते कि हाथी कैसा था, सबका अलग अलग अभिप्राय था, वो भी कंफ्यूजन में आ गया, फिर वो भी दूसरे सूरदास को 7वें सूरदास को कुछ कहता है, वो तो बड़ा कंफ्यूजन में आकर कहता हाथी ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं जो आप वर्णन करते हो। तो जैसे हम भक्ति में गाते नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, वो सूरदास थे नयनहीन थे, लेकिन आज व्यक्ति के लिए मनुष्य के लिए भी ऐसे कहा जाता है, 2 आंखें होते हुए भी तीसरी ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र नहीं है, जिस कारण हम सत्य पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो अभी हम इस सत्य पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये सब बातें सामने रखते हुए एक एक बात को हम कसौटी पर कसे। पहली बात बताई थी परमात्मा प्रकृति परमात्मा है, ये कहा प्रकृति एक जड़ तत्व है। कहा जाता है नाटक जो विश्व ड्रामा बना हुआ है वो पुरुष और प्रकृति और परमात्मा तीनों के आधार से चलता है। पुरुष आत्मा प्रकृति 5 तत्व, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, फिर खाना पीना जो भी है सब प्रकृति मददगार है। तो फिर ये 5 तत्व अनंत है, अविनाशी है। हाँ उसमें परिवर्तन 2 में आता है, किसमें, पुरुष आत्मा में और प्रकृति में, वो सतो रजो तमो से पास होती है, खत्म नहीं होती, परिवर्तन आता है। तो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है वो भी खत्म नहीं होती, लेकिन ये तीनों स्टेजेस से पास नहीं होते, परिवर्तन नहीं आता। तो ये तीनों सत्ता है। अभी तीनों सत्ता में से हम प्रकृति को कहे कि वो ही परमात्मा है तो एक हो गए, वो भी अलग अपना कार्य करती, उसके हम अलग नहीं कह सकते। कई बहुत सुंदर गीत होते हैं, कहते कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार। प्रकृति को देखकर इतनी सुंदर प्रकृति दिखाई देती जो इतना अच्छा गीत बना दिया। तो चित्र बनाने वाला तो अलग होगा, और रचना है वो रचयिता है, एक हो सकता है प्रकृति और परमात्मा, दोनों सत्ता अलग अलग है। तो हम उसे परमात्मा नहीं कह सकते, कसौटी पर कसना है। फिर ब्रह्म तत्व परमात्मा है, जो आगे मैंने 6-7 बातें बताई उसमें से एक एक दूसरा कहा। ब्रह्म तत्व परमात्मा है, अभी वो छठा अखंड ब्रह्म महतत्व कहा जाता, तो वो रहने का स्थान है। कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म में रहने वाला वो है। तो अभी मकान होता वो अलग है, उसमें हम रहते वो अलग है। मकान को ही हम कहेंगे मैं हूं, ब्रह्म तत्व रहने का स्थान, और रहने वाला परमात्मा भी वहां का है। ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंच तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे कहते। तो ब्रह्म भी परमात्मा नहीं हो सकता। तीसरी बात, आत्मा सो परमात्मा। अभी प्रकृति को भी परमात्मा कहा, ब्रह्म को भी कहा, अभी आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा है, अलग क्यों? तो आत्मा वो कौन है? वो उसकी रचना है। हम क्या गाते? तो मात पिता हम बालक तेरे, परमात्मा के लिए ऐसे कहते हैं ना, तुम माता पिता हो हम बालक है। तो मैं परमात्मा कैसे बन सकती, कैसे कहला सकती आत्मा? आत्मा सो परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा आत्मा है, समझा? हर एक अलग अलग आत्मा, वो अविनाशी अलग सत्ता है, वो कभी परमात्मा बन नहीं सकती। वो कोई डिग्री नहीं है परमात्मा की, वो कोई डिग्री नहीं है, कोई भी पढ़कर कुछ बन सकता है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। हाँ, उन जैसा बन सकता है, लेकिन बच्चा कभी पिता नहीं बन सकता। वो भी पिता है, उनके बच्चे उसको भी पिता कहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे मैं वो पिता हूं। तो यहां भी पिता और आत्मा संतान। कोई भी आत्मा कैसा कर्म करती है, मानो पुण्य का कर्म करती है तो पुण्यात्मा कहेंगे, पाप का करती तो पापात्मा कहेंगे। कभी ऐसा कहा कि पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा? वो नहीं कहते। आत्माएं ऐसे ऐसे कर्म में आ जाती है, लेकिन परमात्मा सदैव एक समान रहता है, परिवर्तन नहीं आता, सदा रहता है अलग, और वो एक है। सत्य एक ही होता है, अनेकों में से हम ढूंढते हैं सत्य क्या है। अभी उसके बाद की और बात, चौथी बात कहा था, परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये उनका अपमान है। वो कहां भी है, अच्छे में भी है, किचड़े में भी है, शरीर में, हर एक के शरीर में भी है, चाहे वो कैसा भी कर्म करने वाला हो, या सब में है, प्राणियों में भी है। आज किसी को भी कहेंगे तुम तो पशु हो तो क्या लगेगा, उसे अपमान लगेगा, मुझे पशु कहा। और परमात्मा को हम सब जगह बिठा देते, ये कितना बड़ा अपमान है। तो अंदर में रहने वाली आत्मा तो है ही, दूसरा परमात्मा को उसमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति कैसा भी कर्म कर लेता है, किसी का खून भी कर देगा तो मैं ऐसा कहेंगे परमात्मा ने खून किया, कहेंगे नहीं वो तो नहीं कर सकता। तो क्या वो अंदर बैठा था तो भी उसने उसको रोका नहीं, कहेगा वो मानता नहीं। अभी वो खुद जब परमात्मा है और उनकी नहीं मानेगा, वो तो हो ही नहीं सकता। अर्थात वो साक्षी बनकर देखता रहेगा, आप अपने बच्चे को उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं तो क्या साक्षी होकर देखते हो, कुछ तो करेंगे उसके लिए, रुकावट तो डालेंगे कि ऐसा नहीं करना है। तो परमात्मा बैठा नहीं है, हाँ ऊपर बैठे हुए वो साक्षी होकर देखता होगा। फिर होगा कि ये मान्यता, ये सिद्धांत आया कहां से, क्यों आया, शास्त्रों में ऐसा लिखा, ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे और उन्होंने लिखा है तो वो तो सत्य होगा, उसे कोई ओवरटेक नहीं कर सकते। सोचने में जो लिखा ठीक है, हमें उसे मानना है, आंखें बंद करके और कुछ सोचे बिना हम उसे स्वीकार करते गए, दूसरों को कराते गए। तो किस भाव से लिखा था, पहले ऋषि मुनि जब तपस्या में बैठते थे उनको अच्छी अच्छी अनुभूति अर्थात भविष्य की भी बातें दिखाई देती थी कि भविष्य में यहां कलयुग आने वाला है, लोग बहुत नीचे उतर जाएंगे, तो उन्हों को कुछ डर दिखाना होगा तो वो नीचे न उतरे, और तो कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन ये उन्होंने किया कि हर कर्म करते वो देखता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, जो भी कहो सब जगह है। तो ये डर होगा तो भी उल्टे कर्म पाप कर्म करने से बचेंगे, ये शुभ भावना थी। रॉन्ग नहीं कहेंगे लेकिन ये शुभ भावना थी कि इन्होंने सहज एक रास्ता बता दिया। जैसे कोई माता होती, उसका छोटा सा बच्चा जो घुटनों पर चलता है तो कभी वो बाहर दरवाजे पर चला जाता है तो माता को डर रहता है, तो उसको फिर कहा जाता, क्या कहेंगे उस, वो समझे ऐसी भाषा में कह देगी उसकी माता कि अगर तुम यहां दरवाजे से बाहर निकल गया तो तुम्हें कुत्ता ले जाएगा। तो उसको इतनी समझ है, बुद्धि इतनी है, तो वो समझ लेता है और नहीं जाता है। वहां जाकर भी वापस आता है हंसते हंसते कि देखो मैं सेफ हूं, अपनी मम्मी को दिखाते हैं, खुश होता है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता तो ये स्वीकार करेगा, वो तो बाहर जाएगा, देखेगा मुझे तो कोई कुत्ता नहीं ले जाता है, और ही वो तो कुत्ते के छोटे बच्चे को लेकर आ जाएगा और बताएगा देखो मैं बच्चा लेकर आया, उसमें वो खुश होगा। तो ऐसे ये डर, लेकिन समझ नहीं थी या सोचा नहीं और उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आजकल जैसे देखते बहुत विकसित होते जाते, विज्ञान भी विकसित होता जाता, बुद्धि भी बहुत चलाते, तब तो इतने सारे आविष्कार हमारे सामने हैं, तो सोचते ऐसे तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से डर निकालना। और दूसरी बात ये थी कि भक्तों की बड़ी भावना होती है और भावना से जिस भी रूप से भगवान को याद करते हैं, तो कहते हैं भगवान भक्ति का भाड़ा देता है, कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति होती है तो जरूर उसको वो स्वीकार कर लेता है, फिर दूसरों को भी सुनाएगा। हमारे पास कोई अच्छी चीज, हम समझो मार्केट में जा करके अच्छी चीज और सस्ती लेकर के आए, क्या करेंगे? घर में रख नहीं देंगे, स्वाभाविक रीति से अड़ोस पड़ोस संबंधी सबको बताएंगे, कहेंगे कि तुम भी जाओ, इतनी अच्छी चीज इतने में मिलती है। यहां भी आप सबको बुलाने का भी यही उद्देश्य है कि हमने जो पाया है वो सभी को प्राप्त हो। सत्य को पाया, महसूस किया, अनुभव किया, कसौटी पर बराबर कस करके मान्य रखा, और फिर प्राप्ति, और वो उनसे अनेक गुना। तब सबको बुलाते हैं, सबके पास जाते हैं, सबको संदेश देते हैं, सत्य क्या है वो सुनाते हैं कि भक्ति में इतनी मेहनत करते तो भी वो नहीं प्राप्त कर सकते, वो यहां उतनी मेहनत अगर करने में आए तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो क्या था कि भक्त की भावना थी तो उसको बहुत कुछ मानो प्राप्ति हुई, तो उससे ही प्यार, वही सत्य मान करके चले, जैसे मीराबाई भी थी। तो ये भावना, फिर विवेक, दोनों को साथ में रख करके चलना होगा। तो जब ये भावना क्या है, हमें क्या प्राप्ति कराती, और दूसरों को फिर सुनाते हुए उसमें भी फैल जाती है बातें, अनेक उसको अपनाते, हाँ फलाना कहता है तो उसने प्राप्ति की तो मैं भी करूं। और कईयों को इतना प्यार होता है, जिसको भी याद करते, इष्ट देव देवी जिसको भी, तो जैसे किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्यार होता है तो क्या कहते, जहां देखता हूं तू ही तू है, किसमें भी देखेगा उसको वही दिखाई देता, क्यों? प्यार है। तो क्या हो गया, सर्व में है, सर्व जगह है, सब चीजों में है, सब हो गया। फिर भी प्रैक्टिकल में हम, कोई कुत्ता आएगा तो ऐसे कहेंगे कि आओ भगवान मेरे घर में, मैं आपको भोजन खिलाऊं। हाँ कुत्ते को कुछ दे देंगे वो बात अलग है, बाकी उसको इस रीत से नहीं कोई बुलाते हैं। तो सर्वव्यापी अगर होता तो गीता में ये नहीं कहते, क्या जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान यहां होता तो ये नहीं कहता मैं आता हूं, कोई और जगह है, ऊंचाई पर है, वहां से उसको आना है, सदा के लिए यहां नहीं होता है। और कोई खून करता तो उसमें भी भगवान कैसे होगा। ऐसे हम इस बात को लेकर के कई बातों के साथ कनेक्ट करे, सोचे और फिर सत्य क्या हो सकता है, एकाग्रता किससे आएगी, ये तो हमारा मन भटकेगा। और मैं किसको भी याद करूं, वो भगवान ही है, फिर अलग कोई योग सीखने की जरूरत होगी, फिर तो कुछ रॉन्ग है ही नहीं। कैसा भी व्यक्ति है उसको भी हम भगवान ही समझे, तो ये सर्वव्यापी की बात जो आज मेजोरिटी वही समझकर, मीन्स सिर्फ समझते, प्रैक्टिकल में जैसे बताया ऐसे नहीं चलते हैं, लेकिन ये परंपरा से चलता आया तो हम उन्हीं बातों को लेकर चलते। अभी समय ही कहाँ है जो हम इसके बारे में लंबा सोचे, सत्य है वा नहीं है, और नहीं है तो सत्य है क्या, वहां तक भी तो पहुंचना जरूरी होगा। इसलिए जो करते हैं वो करते चलो। फिर और कितनी बात हुई, 1, 2, 3, 4 हुई, पांचवी बात, परमात्मा निराकार। कोई ऐसे कहेगा परमात्मा निराकार है, और दूसरा उसके अपोजिट में दूसरा कहेगा परमात्मा साकार है। अब कितने प्रश्न है ऐसे परमात्मा के बारे में, तो कहेंगे निराकार अर्थात कोई आकार नहीं, ऐसे कहेंगे। जैसे कंपैरिजन में कहते हैं, समझो मैं कहूं ये हॉल छोटा है तो मेरी बुद्धि में होगा ना कि कोई बड़ा हॉल देखा है, जैसे यहां तो ऊपर ही है, बड़े हॉल में बैठ करके आए हैं तो जरूर कहेंगे छोटा है। वैसे हम कहेंगे वो निराकार, आकार नहीं है, रूप नहीं है, ऐसे निराकार। अभी कोई रूप बिना, कोई आकार बिना कोई चीज हो नहीं सकती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी उसको दिखाना है तो आर्टिस्ट होगा वो क्या करेगा, भाई तूफान का दृश्य दिखाना है तो थोड़ी गमरी आदि भी बना देगा, फिर वृक्ष होगा उसके पत्ते भी थोड़े हिलते हुए सबको दिखाएगा, ड्रॉ करेगा ऐसे। तो हम मान लेंगे कि भाई ये हवा से अभी अभी हवा का तूफान का ये चित्र है, दिखाई नहीं देता लेकिन अस्तित्व तो है। परमात्मा भी निराकार, किसकी कंपैरिजन में, उसको हमारे जैसा दैहिक रूप नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीरधारी नहीं है, इसीलिए निराकार कहते हैं। और दूसरा बहुत सूक्ष्म है, निराकार इसलिए कहते कि परमात्मा अति सूक्ष्म है, अणु अणु से भी सूक्ष्म। यहां भौतिक रीति से देखो तो सूक्ष्म चीज, आकार जरूर है लेकिन हमारी ये भौतिक आंखें उसको देखने के लिए शक्तिमान नहीं है। आंख की लिमिट होती है ना, चलो आंखों से नहीं देख सकते तो कहते सूक्ष्म दर्शक यंत्र से, माइक्रोस्कोप से देखे तो दिखाई देता वो भी, लेकिन परमात्मा तो है ही नहीं भौतिक चीज का, तो भौतिक चीजों से उसे कैसे हम देख सकेंगे। डॉक्टर्स भी कई बार एयर टाइट कांच की पेटी लेकर के बैठते हैं, जो अंतिम समय होता है जाने का, उसका बॉडी उसमें रख करके बंद करके, और बड़े शक्तिशाली कैमरा आदि लेकर बैठते हैं, फिर भी आत्मा चली जाती, देख नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा ये प्रकृति कृत नहीं है, इसलिए वो प्रकृति के साधनों से नहीं दिखाई देगा। तो देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, अभी वो सूक्ष्म है इसलिए उसका आकार क्या है, एक बिंदु ऐसा एक पार्टिकल होता। देखो चार बिंदु होगा तो स्क्वायर ट्राइंगल, तीन बिंदु वो बड़े बड़े रूप है ज्योमेट्रिकली देखे तो, छोटे से छोटा रूप है एक ही बिंदु। इसीलिए परमात्मा अति सूक्ष्म बिंदु है जो इन आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा भी निकल जाती तो हम देख नहीं सकते, सामने से जाती है। पशु का पिता पशु होता, मनुष्य का पिता मनुष्य होता, जानवर का पिता जानवर होता, तो आत्मा का पिता भी आत्मा है। कल आत्मा का रूप क्या बताया, अति सूक्ष्म ज्योति प्रकाश बिंदु, तिलक लगाते वहां अंदर वो विराजमान है, दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा कैसे दिखाई देगा? फिर कहेंगे कि वो तो इतना सूक्ष्म है तो फिर कैसे देखेंगे, देख ही नहीं सकते तो हम अनुभव कर सकते। उसी रूप से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, एकज बिंदु, सिर्फ अति सूक्ष्म। और हम भी जितना हम सूक्ष्म रूप में अपने, मैं आत्मा हूं वो सूक्ष्म रूप में खुद को देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारी आंतरिक आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इतने बड़े 5 फीट के शरीर को देखते हुए समझते हुए आज तक चलते आए तो आत्मा की शक्तियां क्षीण होती गई। साइंस के क्षेत्र में भी देखो आज सब चीजें वो सूक्ष्मता में जा रहे हैं, और इतना वो शक्तिशाली अणु परमाणु सूक्ष्मता की। और पहले लड़ाई होती थी तो कितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर जाना पड़ता था, दिखाई देता था सब। अभी तो ऐसी चीजें सब निकली है जो मनुष्यों की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, या एक में ही सब होते हैं। मोबाइल में देखो तो पहले रेडियो अलग, टेप रिकॉर्डर अलग, जो भी फोन अलग, आज सब एक में। उसकी वैल्यू ज्यादा, लेकिन इतनी ही सुविधा, इतना ही, कल कई बातें सुनी, इतना ही नुकसान, सब बातें हैं, सब आधार हमारे पर है। तो ये आध्यात्मिक जगत में भी हम सूक्ष्मता में जितना रहेंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी। जरूरत पर शरीर रूपी साधन से कर्म करें, जरूरत पूरी हुई, आवश्यकता नहीं है, उसे समेट कर बिंदु बन जाए। और इसीलिए आज दुनिया में शिव को भी, शिव शब्द है ना, उसका अर्थ बिंदु करते हैं, बिंदु लगाओ। या कई व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शिव लगा दो, बिंदु लगा दो। छोटे बच्चे पवित्र होते तो उसे शिव बालक कहते, क्योंकि बालक पवित्र है। तो शिव अर्थात पवित्र, शिव अर्थात शांति, शिव अर्थात फुल स्टॉप। और ऐसे भी अकेले जीरो की नहीं वैल्यू है, आगे एक लगा दो तो बिंदु, कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं आत्मा हूं, फिर बिंदु लगा दो, बिंदु लगाते जाओ, पास्ट इज पास्ट, बिंदु, क्वेश्चन मार्क नहीं। व्यर्थ में जाते हैं उसका कारण ही क्वेश्चन, वो टेढ़ा है तो भी हम उसको ज्यादा लगाते हैं। बिंदु सिर्फ एक ही बिंदु लगाना है तो भी वो मुश्किल लगता है, लगता है ना? पास्ट इज पास्ट करो, उसको याद ही नहीं करो, बार बार याद आएगा, क्यों क्या करते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। जिसमें हमारी शक्ति खर्च होती है, तो परमात्मा का नाम शिव गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। शिव नाम सुन करके ये नहीं सोचना ये शिव पंथी है, लेकिन उसका स्वकथित नाम वो है शिव, अर्थात कल्याणकारी। वो सदा के लिए कल्याणकारी है, सदा वो शांत है, सदा वो पवित्र है। आज नाम होता है शांति भाई, शांति तो इतनी भी नहीं होगी, दूसरों को भी अशांत करते रहेंगे, खुद भी अशांत रहेंगे। तो नाम ऐसे गुण जरूरी है, और ये परमात्मा का एक नाम है। बाकी तो कहते हरि तेरे हजार नाम, किस नाम से लिखू कंकोत्री। अलग अलग भाषा में, अलग अलग धर्म में कई प्रकार के नाम दिए। हिंदू धर्म में ही देखो शिव के कितने नाम है, चारों दिशा में शिव के मंदिर है, यात्रा करने जाते, अमरनाथ है, सोमनाथ है, फिर रामेश्वर में रामेश्वर कहते, राम के ईश्वर, देखो राम के ईश्वर। एक कहानी याद आती, एक भाई था, उसको भिखारी था, भाई तो नहीं लेकिन भिखारी था। वो हर रोज राजा के पास भीख लेने के लिए जाता था, उसको हर रोज राजा कुछ न कुछ देता था, उसका काम था जो आए उसको देना। फिर उसको एक दिन सोच चली कि राजा इतना मुझे देता है, वो कहां से लाता होगा। वो उसको ढूंढना था, तो सोचा वो जरूर भगवान के सामने तो सुबह सुबह बैठता होगा। वो भी सुबह सुबह चला उस दिन राजा के पास, दरवाजे पर जाकर, सुबह में था इसलिए कहा कि राजा कहां होगा, तो उसने कहा कि अभी तो मंदिर में बैठा है। कहा मैं जा सकता हूं? बोला बल जाओ, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं बैठना, वो पूजा करता है, मंदिर में है। वो धीरे से जाकर पीछे बैठता है, फिर कुछ समय के बाद राजा को बोलता हुआ वो देखा सुना कि हे भगवान, मुझे आप ऐसे देते रहना जो मैं सबको देता रहूं। तो अभी वो उठकर चला गया, जाते जाते रास्ते में उसको सोच चला कि भगवान कौन होगा, उसको कौन देता है। फिर देखा सामने तो मूर्ति हनुमान जी की थी, उसकी वो पूजा करता था। तो फिर उसने सोचा हनुमान को कौन देता होगा, राम देता होगा, राम को कौन देता होगा। हम सब जानते हैं रामेश्वर में ये रावण के साथ युद्ध करने से पहले वहां स्थापना की रामेश्वर की, शिव की, उसको रामेश्वर नाम दिया, शिवलिंग बताया। तो निराकार रूप है। अच्छा, फिर उसने सोचा कि अभी जो निराकार शिव शिव है वो राम को देता, राम फिर हनुमान जी को देता, हनुमान राजा को देता, राजा अनेकों को देखकर मेरा भी एक हिस्सा यहां रखता है और सबके हिस्से बढ़ जाते हैं, तो फिर अभी मेरे पास कितना आया? इसीलिए उसकी बुद्धि क्या चली, मैं भी शिव को ही कहूं, वहां से ही लू तो इतना, जो जैसे एजेंट होते उतने कमीशन लेते जाते, और ये तो हिस्से में जाता था। राजा समझो 50 को देता, उसमें से उसको 50 हिस्से में से एक आया। हमें भी अब डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, तो वो भी आपको भरपूर फुल सर्व शक्तियां सर्व गुण दुनिया की सर्वश्रेष्ठताओं का वो सागर है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठताओं का सर्व गुणों का सर्व शक्तियों का वो स्रोत है, वो अनादि मूल है, केंद्र है। कोई भी शक्ति कितनी ना फैली हुई हो विस्तार में दूर दूर तक, लेकिन उसका केंद्र बिंदु जरूर होगा जहां से वो शक्ति वाइब्रेट होती है। कहते हैं परमात्मा क्यों बिंदु है, वही बिंदु से सब शक्तियां सब गुण सारे विश्व में फैलते हैं। अभी जो उसके साथ कनेक्ट हो, आजकल मोबाइल यूज करते हैं तो वहां भी महत्व की बात क्या है, मैच, क्या मैच करना, फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आप कनेक्ट होंगे, ऐसा होता है ना? मैच होगा तो कैच करेंगे, एक डिजिट की भूल होती तो क्या आप कनेक्ट हो सकते हैं? यहां भी भगवान से जुड़ना है, उसकी फ्रीक्वेंसी से हमें भी खुद को मैच करना होगा। तो ये परमात्मा वो बिंदु है, लेकिन गुणों का शक्तियों का सिंधु है, सूक्ष्मता में बड़ी ताकत होती है। ये नहीं भूलना कि ये सूक्ष्म है, ये भूल नहीं जाना कि वो सूक्ष्म है और शक्तिशाली है, वो कमजोर है, वह ये क्या काम करेगा, सारे विश्व को चलाता है। जैसे दूसरी एक बात है, परमात्मा सर्वज्ञ है, ऐसे भी कहते हैं, सब कुछ जानता है, तीनों लोकों को जानता, तीनों कालों को जानता, आदि मध्य अंत तीनों को वो जानता है। यहां के मनुष्य कोई भी नहीं जान सकते तीनों कालों को, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, इसीलिए वो जान सकता है। त्रिनेत्री है, वो तीसरा नेत्र देता है, इसलिए उसे त्रिनेत्री कहते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं, तीन मूर्ति कौन सी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों के वो रचयिता है, उनके भी वो पिता है, तीनों को तीन जिम्मेवारियां दी हुई है। गॉड को जीओडी गॉड कहते, जी फॉर स्थापना करते, जनरेटर, फिर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु शंकर से तीन कार्य कराने वाला वो है, सकारी रीति से ये तीन देवताएं दिखाए हैं, लेकिन उनका भी वो ऊपरी है, सर्वशक्तिवान है। वो क्यों कहते, जैसे कोई व्यक्ति यहां हाजिर है, अपना कारोबार ऑफिस आदि चला सकते, अच्छी तरह से चलाते, दूर दूर है उसको भी एक जगह पर बैठ करके जो चलाता उसे शक्तिशाली माना जाता है। हाजिर है तो सब कर सकते, लेकिन दूर बैठे भी कंट्रोल करना, गाइड करना जो भी है वो करता है। आज प्राइम मिनिस्टर है तो कोई सारे ही देश में सर्वव्यापी नहीं है, जरूरत पर जाते वो बात अलग है, बाकी एक ही स्थान पर दिल्ली में बैठ करके ही शासन करते हैं, सब कुछ करते हैं। कौन कर सकता शक्तिशाली? और परमात्मा इस तो सारे विश्व का करता, इतना शक्तिशाली है। वहां जाकर के करना, उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसे शक्तिशाली नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा का जो नाम है वो भी अनेक है। जिसको जो भावना आई, जो बुद्धि में आया, प्यार से जो उसको कहना है वो नाम दे देते हैं। कोई भी शहर, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर नहीं होगा, हर जगह पर होगा। लेकिन थोड़ी इसमें भी थोड़ी भूल ये हुई है, शिव और शंकर को भी हमने एक माना है। अभी सोचो, अलग है या एक है? या त्रिमूर्ति में मैंने क्या बताया, शिव ऊपर निराकार है और शंकर नीचे साकारी, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो साकारी बताए हैं। तीनों के कार्य अलग अलग है। तो नाम अलग है शिव और शंकर, रूप अलग है निराकार साकार, कार्य अलग है कल्याणकारी विनाशकारी, बल उसके ही आदेश से कर रहे हैं, फिर भी है तो अलग। और शंकर के आगे भी शिवलिंग होता है, तपस्या में बैठा है, वो क्या सिद्ध करता, किसको याद करता, किसकी तपस्या करता, ऊपरी शिव सुप्रीम उसको याद करता है। हमेशा ओम नमः शिवाय हम कहेंगे, ओम नमः शंकराय कभी कहा, भूल से भी नहीं कहते। शिव रात्रि कहेंगे, शंकर रात्रि कहेंगे, अगर एक है तो कहना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, एक नहीं है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं मंदिरों में शिवलिंग होता है, कई बार शंकर का भी रूप उसमें दिखा देते हैं। तो ये जैसे हमारी अज्ञानता है, हमें सोच करके पक्का करना होगा कि ये दो अलग है। नाम भी तो अलग है, रूप भी अलग है, सब कार्य भी अलग। तो रूप अति सूक्ष्म, परमात्मा का रूप माना वो निराकार है, वो सत्य है। देवी देवताएं अनेक है, परमात्मा एक है। उसे देवों का देव कहते हैं, महादेव। देखो ये सब यहां ही सब ने नाम रखे हैं, समझ कि महादेव। उसे स्वयं भू कहते हैं, स्वयं इस भू पर, इस धरा पर आता है, किसी भी मनुष्य द्वारा, माता द्वारा जन्म नहीं लेता, स्वयं प्रकट होता है। और इसीलिए कई बार शिव के मंदिर बनाते हैं तो देखा है हमेशा ऊपर घुमट होता है, वो खुला रखते हैं, उसका काम बाकी रखते, ऊपर से उसको उतारते हैं, ऊपर से आता है। शंभु, स्वयंभू, शंभु, इसका थोड़ा थोड़ा जो परिचय मैं दे रही हूं वो नाम रूप, फिर उसका स्थान। यहां तो होता नहीं, ऊपर रहता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, वहां से वो यहां आता है। लेकिन वो आगे आप लेसन लेंगे, उसमें ज्यादा विस्तार से समझेंगे। जब जब धर्म की ग्लानी होती तब आता है। अभी ये भी सोचना है, शॉर्ट में कह देती, सोचना है क्या अभी धर्म ग्लानी का समय चल रहा है या नहीं, क्या कहेंगे? कई ऋषि मुनियों ने कहा धर्म ग्लानी की निशानियां क्या होगी, क्या कहते? अन्न पड़ीकों में मिलेगा, गाय विष्टा में मुंह डालेगी, फिर छोटी उम्र की कन्याएं भी बच्चे को जन्म देगी। कई ऐसी निशानियां है जो आज देख रहे हैं, तभी उसको पुकारते कि अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। परिचय देते देते जब बात निकली तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको एक शुभ समाचार मैसेज ये मुख्य देना है कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच वाला जो एक चक्र का लेसन है वो बाद में होता है, तो उसमें वो संगम युग पांचवा युग दिखाया, युगे युगे नहीं आता, उसमें भी करेक्शन से हमें समझना होगा। मानो द्वापर युग में आया सत धर्म की स्थापना करने, उसके बाद तो कलयुग आया, तो हम क्या कहेंगे? भगवान कलयुग की स्थापना करने आया। आवश्यकता कहां है? चक्र जो रिपीट होता घूमता रहता, माना जहां से निकले वहां फिर पहुंचना है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर क्या? फिर सतयुग, अभी वो यहां उसकी जरूरत है, यहां आकर वो कुछ हमें शक्ति देगा ज्ञान देगा तो हम नए युग के लायक बन सकते, सतो प्रधान बन सकते, यहां उसकी आवश्यकता है। तो आएगा नहीं, हम कहेंगे वो आ गया है, यहां बैठे हैं वो, उसकी ही रचना है, उसकी ही स्थापना है, उसका ही कार्य है, वो कर भी रहा है करा भी रहा है। तो ऐसे समय पर हमें समय को भी पहचानना है, उसका कर्तव्य क्या, वो भी कब आता, वो भी कहां से आता, आगे बताया ऊपर से आता है, परम धाम से आता है, ऊपर हम खुद को देखें तो बहुत दूर की दुनिया, लेकिन फिर भी वो बिंदु लाइट नीचे सेकंड में आ जाता है, अपना कार्य करके पढ़ा करके चला जाता है। और सब ऐसे अनुभव करते कि ऐसी पढ़ाई कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। जितने बड़े बड़े पोस्ट पोजीशन वाले डिग्री वाले वो भी इस पढ़ाई पढ़ने के लिए आते, उनको भी जरूरत है इस पढ़ाई की। कईयों को प्रश्न होता है यहां रोज ये लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ करके जाते, किस लिए, क्या मिलता होगा, क्या सिखाते होंगे? तो यहां क्या सिखाया जाता, इतनी आंतरिक स्वच्छता, आत्मा के जो दाग से भरी हुई आत्मा को बेदाग बनाता, ये कार्य करता, इसलिए कोई पढ़ा नहीं सकता। और ये पढ़ाई सारे 140 देशों में लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है परमात्मा का शॉर्ट में परिचय, नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, जो कहा सर्व गुण और श्रेष्ठताओं का ये सोर्स है, केंद्र बिंदु है, और वहां से सब कुछ वो वाइब्रेट करता, गुणों का सागर है, गुण और शक्तियां अनंत है, अखूट है, जितने कनेक्ट हो और जितने वो शक्तियां लेना चाहे ले सकते, वो शक्ति मेरे पास आ रही है। तो क्या होगा, हमारे संकल्प से भी वो हमारी और खींचाएगी, और वही योग है ऐसे। तो बाकी तो आधार विधि क्या है वो तो आपको अलग सेशन में सुना देंगे, लेकिन ये है परमात्मा की फैली हुई शक्ति को, श्रेष्ठता को हम अपने में भरे। तो ये तीनों चारों बातों को बुद्धि में रखते हुए एक दूसरी जो कसौटी की बात मुख्य बाकी है वो है, सर्वधर्म मान्य जो होगा वो सत्य होगा। परमात्मा एक देश एक धर्म का पिता नहीं है, सारे यूनिवर्स का, विश्व का पिता है। अभी अन्य धर्म में थोड़ा देखे, मानो इस्लाम धर्म, वो क्या कोई साकारी देवी देवताओं को मानते हैं? अभी नहीं मानते। शुरू में, फिर भी शुरू में जब स्थापना हुई इस्लाम धर्म की, तो मक्का में 360 मूर्तियां थी, क्योंकि शुरुआत थी देवी देवताओं की, युग पूरा हुआ और फिर बाद में आते, और उसमें से ही कोई ऐसे कन्वर्ट होते हैं, कोई दूसरा धर्म स्थापन करते। लेकिन जब मोहम्मद पैगंबर का आगमन हुआ, उसने कल कहा अल्लाह एक है, जब ये कहा तो सबने विरोध किया, सबको निकाल, सबने निकाल दिया उसको, मदीना जाने के लिए कहा। वहां उसने इस बात को स्प्रेड किया कि अल्लाह एक है, समझाया, कईयों ने स्वीकार किया, थोड़ा समुदाय तैयार हुआ, फिर वो सब मक्का में आकर के कहा ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, बड़ी धुंध लड़ाई आदि चली। तब आकाश से एक पानी पत्थर गिरा और वो पत्थर संगे अश्वद जो मक्का में लगाया गया है उसको सब चुंबन करते हैं, तब मानते हमारी यात्रा पूरी हुई, हमारी हज पूरी हुई। तो ये भी शिवलिंग आकार का पत्थर है। तो मोहम्मद पैगंबर से फिर धीरे धीरे वो साकारी देवी देवताएं थे वो सब खत्म हो गए, उनको खत्म कर दिया। तो आज भी मुस्लिम भाई बहने ये लक्ष्य रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम जीवन में एक बार मक्का जरूर जाए यात्रा करने। तो वहां भी कोई आकारी साकारी मान्यता नहीं है, शिवलिंग आकार का काला पत्थर। वैसे क्रिश्चियन धर्म में हजरत मूसा, वहां भी पहले देवी देवताओं की थोड़ी शुरुआत थी, लेकिन जब हजरत मूसा पहाड़ पर गए, वहां पत्थर पर 10 आदेश लिखे हुए थे, उन्होंने साक्षात्कार की इच्छा करी, उसको साक्षात्कार हुआ, ये हुआ लाइट का, गॉड इज लाइट, क्रिश्चियन धर्म में कहा। कभी यीशु ख्रिस्त ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, क्या कहा, मैं भगवान का बच्चा हूं, सन ऑफ गॉड। तो जरूर वो तो गॉड नहीं है, ऊपर है लाइट। और धर्म की बातों में देखते हैं तो वहां भी ऐसे है, सिख धर्म में भी एक ओम का निराकार ये सब कहते हैं। पारसी लोग भी ईरान से जब आए तो वहां से ज्योत लेकर के आए, फिर यहां आकर अग्यारी उनों की होती है मंदिर को, जैसे अग्यारी कहते हैं, तो वहां वो सदा जलती रहती है ज्योत। तो ये भी दूसरे धर्म में भी देखो किसको भगवान समझा, कोई देहधारी को नहीं, कोई व्यक्ति को नहीं, लाइट को। तो सर्व धर्म मान्य जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि देवी देवताएं खराब है, खराब नहीं है, वो परमात्मा की ही रचना है, श्रेष्ठ रचना श्री कृष्ण, पहली रचना, सतयुग की पहली रचना। तो सोचो रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा उसको रचने वाला। तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इस सभी बातों को हम वो कसौटी पर जो कस करके हम एक निर्णय पर आए कि परमात्मा है कौन, नहीं है वो नहीं, वहां तो छोड़ दिया, सातवीं बात बता दी उस पेपर में जो लिखा था, तो परमात्मा की अनेक बातें उसके बारे में, वो हस्ती है ही नहीं, लेकिन है वो हमारे अंदर नहीं है, उसको पहचान करके हम अपने साथ रखे तो फिर वो हमें कितनी मदद देता है, क्या क्या शक्ति देता है वो अनुभव करे। राजाओं का राजा राजयोग बनाता है, तो राजयोग की शिक्षा क्या है वो ही सिखाता है। बाकी तो अनेक प्रकार के योगा, फिजिकल एक्सरसाइज आदि है, आसन आदि है, उसमें परमात्मा के साथ का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए जरूरी है, अच्छा है, जरूर करें, लेकिन मन को सशक्त बनाना है, दुरुस्त बनाना है, आज के समय में उसकी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है वैसे क्या हो रहा है, हर एक के जीवन में जो पहले नहीं थे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और आंतरिक शक्तियां कम हो रही है, जिसका परिणाम क्या है, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां आज बढ़ रही है। आवश्यकता क्या है, हमें अपने मन को मजबूत शक्तिशाली बनाना होगा, तब आने वाली परिस्थितियों को हम पहुंच पाएंगे। नहीं आएगी वो नहीं, हाँ बहुत शक्तिशाली है आपको देख कर दूर से ही चली जाए वो बात भी अच्छी है, लेकिन हमारे में कितनी ताकत है, वो आएगी तब हम समझ पाते हैं, वो हमारे लिए परीक्षा है, उसमें हमें पास होना है। पास होने के लिए मुझे सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होना है। वायर होता है कनेक्शन के लिए, वायर होते हैं ऊपर, इंसुलेटर रबर होता है, अगर उसके साथ गांठ लगा दो दूसरे वायर से तो करंट पास होगी, नहीं होगी ना। करंट पास करना है तो इंसुलेटर को निकाल देते हैं दोनों तरफ के, फिर जॉइंट करते हैं, फिर करंट पास होती है। स्विच ऑन करो करंट पास, वो स्विच ऑन करेंगे तो भी नहीं होगी, मन से करेंगे चलो स्विच ऑन, मैं याद करता हूं कि उसकी शक्ति मेरे में आ रही, लेकिन देह वो इंसुलेटर का काम करता है, देह अभिमान कहो देवान कहो, जो करंट आने नहीं देता है। मंदिर में भी जाते तो जूते बाहर निकाल के फिर जाते हैं, है ना, चमड़ा है बाहर निकाल दो, ये भी चमड़ा है उसे भी बाहर निकाल के फिर मेडिटेशन में बैठो, मैं आत्मा हूं बिंदु हूं, जो जैसा स्मृति में शुरुआत करता, जैसे डॉक्टर होगा वो घर में होगा तो क्या करेगा, घर में होगा तो बच्चों के साथ बातें करेगा, पढ़ाएगा या कुछ लाना करना है व्यवहार है वो सब करेगा, वही बुद्धि में घूमता है, वहां से जाकर अपने हॉस्पिटल में सीट पर बैठता मैं डॉक्टर हूं, वह जाता है तो भी पेशेंट को याद करेगा, फलाने को मिलना है उसको ऐसी ट्रीटमेंट देनी है वो याद आएगी। वैसे मैं देह हूं वो समझे तो क्या होगा, देह के संबंध में जो भी बातें होगी व्यक्ति होगी उस पर बुद्धि जाएगी, आत्मा बन जाएंगे, देह से अलग मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के बारे में एक ही संबंध है परमात्मा के साथ, उस तरफ हमारा मन प्रवाहित होगा। तो हमें आत्मा बन परम आत्मा के साथ जुड़ना है, वो ही है मेडिटेशन। वो सूक्ष्म शक्तियां आती दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं। मानो एक मास आपने योग किया इस प्रकार से, पहले थोड़ी थोड़ी बातों में आप डिस्टर्ब हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, अभी कम हुई, एकदम नहीं गई लेकिन कम हुई, कम होते होते खत्म हो जाएगी। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, मानो क्रोध है, वो भी खत्म होता है, शांत हो जाते, प्रेम से चलते, ये जो वैल्यूज है वो हमारे में बढ़ती जाएगी। इसलिए जो हमारे अंदर किचड़ा है, जो भी अस्वच्छता है, तामसिकता है, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो अभी हम परमात्मा का परिचय लिया, लेकिन उसमें अभी एक दो बातें वो बाकी रही कि वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ना उसके माता पिता है, ना उसका कोई शिक्षक है, ना कोई उसका गुरु है, वो ही सब कुछ है और वो एक ही है, सर्वोपरि सत्ता है, सर्वोपरि, परे है। किन किन बातों से परे है? जन्म मरण से मुक्त है, देह देह के संबंधों से मुक्त है, सुख दुख से मुक्त है, कर्म और कर्म के फल से भी मुक्त है, वो है परमात्मा। इसलिए ये सब बातें बुद्धि में रख करके आप जिसको भी मानते हो, ऐसे नहीं कहते कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी अभ्यास करते हुए अनुभव करो कि मेरे में परिवर्तन आता है, संस्कार परिवर्तन। अभी संस्कार परिवर्तन से या बीबी का संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृति, अभी आधुनिक क्या है वो तो सबने बहुत सुना और हम भी जानते, लेकिन अभी उस श्रेष्ठ संस्कृति को इस विश्व में लाना है, शुरुआत खुद से करनी है। इसलिए खुद इस स्रोत से जुड़े और उसकी शक्तियां भरते जाए, निश्चित करना होगा कि हम हर रोज फलाने समय पर, खास तो अमृत वेले का समय, वो खास बहुत अच्छा है मेडिटेशन के लिए, जहां मन भी हमारा शांत होता है, नींद करके उठते हैं, कोई ऐसी बातों का प्रभाव नहीं होता, सब सोए हुए होते तो उनके वाइब्रेशन भी नहीं हमें डिस्टर्ब करते, भक्त लोग भी योगी भी सुबह सुबह उठ करके ही अपने अच्छे वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो ऐसे वातावरण में हम भी बैठे, थोड़ा उठना पड़ेगा, ये सबको थोड़ा मुश्किल होता है जल्दी उठना, नींद का त्याग करना, लेकिन उसकी भेंट में बहुत कुछ मिलता है, वो अगर सोचेंगे तो उठ पाएंगे। आप कुछ धंधा करते हो, कोई बाहर से आने वाला कहेगा मैं सुबह सुबह 4 बजे आऊंगा, तो शायद उसके साथ कुछ धंधे की बातें करनी है, हिसाब करना है या कुछ लेना करना है, बहुत फायदा होने वाला है। सुबह तो क्या, रात को भी नींद नहीं आएगी, कब 4 बजे और मैं उसको मिलूं, कहां गई नींद, प्राप्ति है। हाँ, तो ऐसे ये जबरदस्त प्राप्ति है और ये प्राप्ति के आगे नींद कुछ नहीं है, और अभी ही कर सकते, ये बहुत महत्व की बात है। यही समय है इस सृष्टि चक्र में, यही युग है, संगम युग जिसको कहते, उसमें आ गए परमात्मा के संग, उस संबंध जोड़ दिया, संबंध से प्राप्ति, संबंध से याद, बहुत कुछ ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार खुद को तैयार करो, या एक से एक ज्योत से ज्योत जले। हमारी ज्योत जगी तो हम दूसरों की जगा सकेंगे। तो हर एक अपने घर में, अपने परिवार में एक दीपक बनो। बन सकते एक दीप, मैं दीपक बनूं, मैं यहां से ज्योत लेकर जाता हूं या जाती हूं, तो वहां जाकर मैं प्रकाश फैलाऊं, ज्ञान का प्रकाश। वो नहीं आता है तो अच्छे शुभ वाइब्रेशन का प्रकाश, ये सब हमसे फैलता रहेगा तो वो घर क्या बन जाएगा, बदल जाएगा, सुख शांति या शांति कुंड बन जाएगा। गुजरात में अभी एक प्रोजेक्ट चलता है कि हर एक अपने घर को, स्थान को, सेवा केंद्र को शांति कुंड बनाए। उसके लिए क्या क्या करना है, वो सब प्रोग्राम्स गुजरात जोन से मिलते हैं पूरे गुजरात में, और उसी प्रकार सब पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं। तो ये भी हमारी पढ़ाई है। पढ़ने वाला कितना रेगुलर तो होगा, पंक्चुअल भी होगा, होमवर्क भी करेगा, सब कुछ करेगा, जल्दी उठेगा भी, परीक्षा में पास होना है तो क्या करेगा। और हम तो ऐसे कहेंगे, आप तो अभी आए हो, परमात्मा का कार्य 90 साल से चल रहा है, तो अभी कब तक चलेगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते कि कुछ समय के बाद परिवर्तन जरूर होगा। नई दुनिया की स्थापना के लिए जो भी, जितने भी एक्टर्स होंगे वहां के, वो तैयार हो जाए। अभी सब तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे तैयार हो जाए और परिवर्तन। और नहीं होंगे, मानो के मैं नहीं हूं, नहीं करूंगी, तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं। इसका तो प्लान है निश्चित रूप से, हर कल्प में अनेक बार ये आया है नया युग, इस बारी भी आ जाएगा। ऐसे है, हम रह जाएंगे लेकिन दुनिया में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तो इस युग में आप सभी भी चलो, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो अभी हम बैठेंगे कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। सबको क्लियर हुआ कि परमात्मा कौन हो सकता है? हाँ, हुआ? प्रश्न तो अनेक के होंगे लेकिन उसमें समय लगेगा, इसलिए या बाद में थोड़ा, अभी सबको फिर जाना होगा।